प्रणाम। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 25 मई 1991 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुए। राम
नारायण 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 नारायण। अभी कोई बात याद ना आ रही नहीं है भाई, कोई याद ना तो ना तो कैसे कोई बात हो तो बोल दो। क्या कृष्ण नहीं बात में समझ आ रहे हैं, कोई दूसरे समझा दो आप समझा दो।
करना है इसकी उपयोगिता ले काम में ले, वैसा आपने कहा और रुपये का उदाहरण दिया। रुपये के तो बगैर तो हम काम चला सकते हैं, लेकिन ये जो करना है मन बुद्धि इंद्रिया इसकी अनिवार्यता ऐसा इसलिए कि इसके बगैर दूसरा पर्याय नहीं। इसके बगैर
अनिवार्य नहीं था, इनकी परमात्म तत्व में अनिवार्यता अनिवार्यता नहीं है। परमात्म तत्व का बोध, परमात्म तत्व का साधन, उसमें इसकी निरपेक्षता है और संसार का में सब बिल्कुल आवश्यकता है। दो विभाग है, एक परमात्म तत्व का बोध, एक संसार का व्यवहार। तो संसार के व्यवहार में तो सब कर्णों की आवश्यकता नहीं, पर कर्ण की आवश्यकता रहेगी और परमात्म तत्व में आवश्यकता कर्ण की नहीं रहेगी, अनिवार्यता नहीं रहेगी। पहले साधन करने में रहेगी, जब तक संसार के संबंध हमारा अधिक है तब तक रहेगी। जब संबंध संसार छूट जाए तो कर्ण छूट जाएगा, कर्ण छूट दे संसार संबंध छूट जाता। नारायण 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 नारायण। अब ध्यान देना भाई, ये बात हुई, अब सज्जन ने बात पूछी बहुत अच्छी, उसका खुलासा करता हूँ। अब साहब आप उकताना नहीं, घबराना नहीं, ये कर्ण की आफत अब के छिड़की ज्यादा, समझे। आओ कहता हूँ आप उकताना नहीं, क्योंकि बार बार कर्ण निर्भय कर्ण सफय कर्ण 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 तो कर्ण नाम कान का है, तो कान की बात नहीं है ये। कर्ण नाम इंद्रियों का है, साधन है, औजार है, उनका नाम है कर्ण। जैसे हम लिखते हैं तो कलम है वो कारण, कर्ण है कलम के द्वारा ही हम लिखते हैं। कलम नहीं हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखने का साधन होता उसका नाम है कर्ण। ऐसे देखने का साधन है कान, आंख, सुनने का साधन है कान, सूंघने का साधन है नासिका, चखने का साधन है वरसना, त्वचा का साधन है ये स्पर्श करना। तो ये कर्ण है सभी, किसी में किसी का कर्ण के उपयोग है, किसी का किसी कर्ण में उपयोग है, पर कर्ण के उपयोग से ही काम होता है, नहीं तो चैन चलना फिरना खाना पीना कैसे होगा। तो कर्ण की अपेक्षा कर्ण की अनिवार्यता होती है, सब कर्णों की अनिवार्यता सब कामों में नहीं होती। जैसे शब्द के सुनने में कान की अनिवार्यता है, अरे कान के बिना भी हम बात कर सकते हैं, तो कान के बिना नहीं कर सकते। जिसका बहरा हो गया, कान नहीं सुनता, तो उसमें बात नहीं कर सकते। तो बात के सुनने में कर्ण की इसकी तो अनिवार्यता है, परंतु उसमें त्वचा की अनिवार्यता नहीं है, ऐसे आंख की अनिवार्यता नहीं है, नासिका की अनिवार्यता नहीं है, रसना की अनिवार्यता नहीं है। मन रचना जरूर होनी चाहिए, ये अनावश्यक नहीं, इसकी निरपेक्षता है। इसका अभाव की जरूरत नहीं है, निरपेक्ष पढ़ना है। शब्द सुनने में कान की खास आवश्यकता है, कान के सिवाय दूसरी इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, उनका अभाव होना चाहिए, ये नहीं है। अभाव तो कैसे होगा, इंद्रियों का अभाव तो होगा, परंतु उनके कान में सुनने के लिए रसना की जरूरत नहीं है, निरपेक्षता है। परंतु परमात्म तत्व में इन कर्णों में किसी कर्ण की भी अपेक्षा नहीं है, कोई कर्ण भी लागू नहीं होता। कर्ण सब है प्रकृति का कार्य, तीन गुण, तीनों गुणों से ये कर्ण पैदा होते हैं। तो ये कर्ण अपने गुणों तक भी नहीं पहुंचते, प्रकृति के नहीं पहुंचते, तो परमात्मा तक कर्ण कैसे पहुंचेंगे? तो कर्ण रहित तत्व है वो। अब कर्ण रहित तत्व को जानने के लिए कर्ण निरपेक्ष, मैंने कहा कर्ण रहित नहीं कहा है, तो कर्ण वहां तक पहुंचने के लिए कर्ण निरपेक्ष है, परंतु साधन कर्ण में तो कर्ण की आवश्यकता तो बढ़ जाती है। नाम जब करेंगे तो राम 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 जीव जबान की आवश्यकता होगी, पुस्तक देखें तो कान की आवश्यकता होगी, सत्संग सुने तो कान की आवश्यकता होगी, पुस्तक देखते आंख की आवश्यकता होगी। तो कर्ण आवश्यक है, निरपेक्ष नहीं है, अपेक्षा है परंतु रहित बना नहीं है। कर्ण की निरपेक्षता है परमात्म तत्व में, एक है परमात्मा, एक है प्रकृति का कार्य। प्रकृति के कार्यों में कुछ न कुछ कर्ण लेना ही पड़ेगा, और प्रकृति से ऊंचा उठने पर किसी कर्ण की अपेक्षा नहीं है, ये बात है परमात्म तत्व में। तो वहाँ कर्ण परमात्म तत्व में हम आभार से आरंभ से चले तो कि जब तक हम प्रकृति के साथ गुले मिले रहते हैं तब तक प्रकृति के कर्णों की आवश्यकता होती है, परंतु इससे अतीत तत्व में जब हमारा लक्ष्य हो जाता है, कुछ कर्ण से अतीत तत्व, प्रकृति के कार्य से अतीत तत्व को जाना है, तो कर्ण की निरपेक्षता रहती है, कर्ण का अभाव नहीं रहता है, कर्ण की अपेक्षा नहीं है, कर्ण की अपेक्षा से ही परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, ये नहीं है। ये दोनों का अलग अलग विभाग है, एक प्रकृति, प्रकृति का कार्य जड़, उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, एक उत्पत्ति विनाश रहित तत्व, वास्तव तत्व। तो वास्तविक तत्व में कर्ण नहीं पहुंचता है, परंतु पहले वास्तव में जाने के लिए कर्णों की आवश्यकता पड़ती है, इस वास्ते कर्ण रहित नहीं, कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्ण निरपेक्ष ही साध्य है, ये कहना है। अब इसमें कोई बात समझ में नहीं आई तो बोलो, फिर इसका करते विवेचन। मानो प्रकृति और प्रकृति के कार्यों के साथ सब संबंध है, उसमें कर्णों की अपेक्षा है, कोई कोई कर्ण होगा ही, कान में कर्ण, शब्द में कान के कर्ण की आवश्यकता है, परंतु रूप के देखने में कान की जरूरत नहीं है, आंख की जरूरत है। मन कोई न कोई कर्ण रहेगा प्रकृति के कार्य में, और प्रकृति से ऊंचा तत्व परमात्मा है, उसमें कर्ण नहीं रहेगा, प्रकृति से अतीत तत्व है, गुणातीत उच्चते, गुणों से अतीत है वो तत्व। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि, सब जितने कर्म होते हैं प्रकृति के द्वारा ही होता है, और वो अकर्ता, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वेषां, यह पश्चिमात्मा अकर्ता, ऐसा देखता हूँ आत्मा को अकर्ता देखता है, तो आत्मा का अकर्तापन है, वह कर्ण नहीं है, कर्तापन ही नहीं है तो कर्ण कैसे रहेगा? इसमें कोई शंका हो, इसको समझ कर शंका करना, उठ बताऊंगी, समझ कर शंका करो, इसमें विश्वास से कर्ण निरपेक्ष कैसे?
बुद्धि आदि
अपने आप से कैसे अनुभव करें?
हम ऐसे करेंगे, मैं हूं ना, बैठो बैठ जाओ, खूब समझो, आप अपने को हूं ऐसा समझते हैं ना, मैं हूं, अपनी सत्ता मानते हो ना, तो अपनी सत्ता में किस कारण की आवश्यकता है? कारण की नहीं है ना, ये कारण निरपेक्ष है, अपना ज्ञान निरपेक्ष है। अब साधन में कारण निरपेक्ष ऐसा कैसे होगी कि मैं भगवान का हूं? जिस तरह से विवाह होता है तो कन्या वर को स्वीकार कर लेती है तब वो विवाहिता हो जाती है, और जब वर को स्वीकार नहीं करती वो कुंवारी होती है, तो कुंवारीपना मिटाकर विवाह हो जाने से विवाहित होती है। किस कर्ण के द्वारा होती है अब बताओ? व्यवहार में भी परमात्मा की बात दूर रही, इसको कर्ण बताओ। बोलो, कर्ण नहीं है ना, इस तरह से है। तो इसमें क्या है? अब कर्ण रही तो है तो कर्ण तो बता नहीं सकते। अरे विवाह होता है, मान्यता होती है, वो कुंवारी नहीं मानती अपने को। ऐसे वर होता है वो भी विवाह होने से पहले कुंवारा होता है, विवाह होने पर कुंवारा नहीं कहलाता। स्त्री न रहे तो भी कुंवारा नहीं कहलाता। अरे स्त्री का कन्या का पति न रहे तो भी वो कुंवारी नहीं कहलाती, विधवा हो सकती है, और पुरुष विधुर हो सकता है। जैसे स्त्री पति के बिना विधवा होती है, ऐसे पत्नी के बिना वो विधुर होता है, परंतु उसको कुंवारा नहीं कह सकते, वो तो विधि मिल गया। तो इसमें क्या, किस बात की जरूरत है? अब ध्यान देना, आप कर्ण बिना काम नहीं, बिना कर्ण बिना कोई कर्ण नहीं है, तो क्या है? ये स्वयं की स्वीकृति है, स्वीकार कर लिया कि मैं विवाहित हूं, स्वीकार है, स्वीकार स्वयं करता है, ये कर्ण के द्वारा नहीं होता है। स्वीकृति अस्वीकृति, जैसे कुंवारा पाने की अस्वीकृति हो गई, अब कुंवारी नहीं हूं मैं, और विवाहित की स्वीकृति हो गई, तो स्वीकार करना अस्वीकार करना ये स्वयं का काम है, ये कर्ण का काम नहीं है। ख्याल में है ना ये बात? इस बात से कर्ण निरपेक्ष है। इसमें एक मार्मिक बात बताऊ, ध्यान देना, स्वयं ये निरंतर रहता है, कर्ण निरंतर नहीं रहते। गाढ़ सुषुप्ति में कर्ण लीन हो जाते हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, अंतःकरण, ये तेरा कर्ण है, तो ये सब गाढ़ नींद आती है उसमें ये जागृत नहीं रहते, लीन हो जाते हैं अविद्या में, परंतु स्वयं रहता है। क्या पता कि मैं ऐसा सुख से सोया मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, इसका पता तो था ना, नहीं तो कैसा कहता है कुछ पता नहीं था? तो ये कर्ण के द्वारा कुछ पता नहीं था, सब ज्ञान के अभाव का ज्ञान स्वयं को होता है, ये कर्णों के द्वारा नहीं होता है। इसमें शंका हो तो बोलो। ये बात ठीक है ना? अब दूसरी बात बताऊं, ऐसी अनेक जन्मों में जीव फिरता है, तो अनेक जन्मों में शरीर अनेक होते हैं। मनुष्य बनेगा तो शरीर दूजा होगा, पशु बनेगा तो शरीर दूजा होगा, पक्षी बनेगा तो शरीर दूजा होगा, देवता बन जाएगा तो शरीर दूजा होगा, भूत प्रेत पिशाच बनेगा तो शरीर दूजा हो जाएगा, मन वो स्वयं तो वही रहेगा ना क्या? तो स्वयं मिटता नहीं है, स्वयं रहता है और शरीर मिटते हैं। ये मिटने वालों में कर्ण काम करते हैं, न मिटने वाले में काम कर्ण नहीं करता, वहां कर्ण नहीं जाता है। ठीक है, अब तीसरी बात और बताना है। अरे भाई ध्यान देकर बहना सुने, ध्यान देकर हमारा शरीर बदल गया। बचपन में जो शरीर था वैसा शरीर नहीं रहा, बचपन में जो मन था वैसा मन आज नहीं रहा। बचपन में जो खिलौने थे उसमें एक आकर्षण था, वो आकर्षण नहीं रहा। तो खिलौने नहीं रहे, मन नहीं रहा, वो विचार नहीं रहा, वो निश्चय नहीं रहा, वे मित्र नहीं रहे, वो देश नहीं रहा, वो काल नहीं रहा, वो घटना नहीं रही, वो परिस्थिति नहीं रही। ये ज्ञान है ना अपने को, इसमें संदेह हो तो बोलो। मान ये तो बदल गए, परंतु स्वयं बदल गए क्या? मैं बचपन में ऐसा था, आज ऐसा हो, तो आप तो बचपन थे वो ही रहे। अब तो स्वयं नहीं बदलता है, इसके साथ वाली चीजें बदलती है। ये बदलने आपके साथ नहीं है, ऐसे संसार बदल गया परंतु परमात्मा नहीं बदले। तो नहीं बदलने वाले आप, नहीं बदलने वाले परमात्मा के साथ एक है, और बदलने वाला शरीर बदलने वाले संसार के साथ एक है। ये संसार काम आएगा बदलने वाले शरीर के, न बदलने वाले के शरीर काम नहीं आएगा। शरीर से सेवा होगी, पदार्थों से रुपये पर जो सेवा होगी, तो बदलने वाली वस्तुओं की बदलने वालों से ही सेवा होगी, न बदलने वाले की सेवा बदलने वाले से नहीं होगी। न बदलने वाला शरीर को अपना मानता है तो आप शरीर की सेवा करने से उसे अपनी मान लेता है। जैसे बच्चे का प्यार करने से माँ राजी हो जाती है, तो माँ है बच्चे की माँ, तो बच्चे की सेवा करे, बच्चे का पालन करे, माँ राजी हो जाए। ऐसे शरीर के साथ आप एक हुए हो, अब शरीर को सुख पहुंचा रहे, आप सुख मान लेते हो, पर आप अलग हो, शरीर अलग है। ये ज्ञान खास खास काम की चीज ये है कि शरीर और संसार एक है और चेतन परमात्मा और आप एक हैं। ये ज्ञान कराने के लिए ये कर्ण निरपेक्ष कर्ण निरपेक्ष कहा जाता है। ये मूल बात है, इसके लिए ये सब प्रयास है, जितना सत्संग करते हैं वो इसी के लिए है। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। कर्ण निरपेक्ष की बात इस बात चलती है कि जिन कर्णों से आप संसार का काम करते हैं उसी कर्णों से भगवान को नहीं देख सकते। इसमें एक विलक्षण बात और है, वो सुन लो। हमारा कर्ण परमात्मा तक नहीं पहुंचता, पर परमात्मा कर्णों तक पहुंचते हैं। हमारी इंद्रियां परमात्मा तक नहीं पहुंचती, परंतु परमात्मा इंद्रियों में आ जाते हैं। वे अगर चाहे तो आप देख सको जैसा रूप धारण कर सकते हैं, आप स्पर्श करो जैसा रूप धारण कर सकते हैं, आप सुनो जैसा कोई बोल सकते हैं, तो अपने इंद्रियों में वे आ सकते हैं, हमारी इंद्रियां वहां नहीं जा सकती। ये प्रकृति में ही रहेगी, प्रकृति से अतीत में नहीं रहेगी, परंतु परमात्मा ऐसा प्रकृति से अतीत भी है और प्रकृति में भी है और प्रकृति कार्यों में है, वे सब जगह है। परंतु ये कार्य प्रकृति में नहीं, प्रकृति स्वयं परमात्मा में नहीं, वो परमात्मा निर्लेप है, सबसे अलादा है, वहां तक प्रकृति नहीं पहुंचती, पर प्रकृति में परमात्मा पहुंचते हैं। खास सार चीज है, इसी के लिए कर्ण निरपेक्ष कहते हैं। ठीक है ना, संग तो बोलो, संदेह तो बोलो। मानो संसार और शरीर एक है, संसार से शरीर को अलग अपना एक मानना ये गलती है, और परमात्मा से अपने को अलग मानना ये भी गलती है, ये गलतियां हैं। और परमात्मा के साथ हमें हमारे परमात्मा और हम परमात्मा के ये सही है, शरीर संसार का संसार शरीर का ये सही है। तो ये कैसे, ये ज्ञान कर्णों से नहीं होगा, कर्णों से संसार के साथ एक है तो ज्ञान हो जाएगा, पर परमात्मा के साथ हम एक है ये स्वीकृति से होगा, ये कर्णों से नहीं होगा। तो ये कर्णों से द्वारा पूरा ज्ञान नहीं होता है, पर कर्ण को काम ले सकते हैं, कर्णों को भी परमात्मा के भजन स्मरण जप चिंतन में काम ले सकते हैं, कर्ण हमारे काम आ जाएंगे, पर कर्णों के द्वारा पकड़ लेंगे ये बात नहीं है, ये कर्ण निरपेक्षता की बात है। नारायण नारायण नारायण। तो बुद्धि में आ जाए संतोष हो तो आप एकांत मिलो, अभी यहां तो समय हो गया, आप एकांत मिलो। मैंने पैर दो तीन बार कह दिया कि तुम्हें शंका हो तो बोलो, तुम बोले नहीं, बुद्धि में नहीं है तो पहले कह तो कुछ कह देता, उस समय ज्यादा हो गया। बुद्धि में आया नहीं, पहले बोलते हैं कि हमारी बुद्धि में नहीं बैठी है बात। तो बुद्धि में पहले हमारे भी नहीं आई है, पर अब हम नहीं कह सकते हमारी बुद्धि में नहीं आई है। पहले तो बालक भी थे नहीं हमें, तो उसमें कोई पूछा तो कैसे बताते, अक्षर भी समझ में नहीं आते, क ख ग ये भी समझ में नहीं आता, वही दिन तो हमारा ही था, फिर समझने लग गए। तो एक बात है विचित्र, समय थोड़ा फिर भी कह दे, मैं जब वर्णमाला पढ़ गया, क ख ग की वो सूख सीख लिया, आ ये सीख लिए, ये सीखने के बाद हमारे वहां पुस्तक थी संस्कृत की नहीं हिंदी की, अंग्रेजी पुस्तक थी नहीं, उर्दू की थी नहीं, तो जो देखू उसमें अक्षर वही है, तो मेरे समय पढ़ाई अब बाकी क्या रही। ये मेरी याद है, मैंने पढ़ाई तो पूरी पढ़ ली, हम इतनी है कि ये लोग मिलाकर के अक्षर लिख देते हैं ना, ये गलती करते हैं, उसे पता नहीं लगता, अगर अलग अलग लिखे तो बड़ा अक्षर है, ये हमारी बुद्धि है, समझिए अब बुद्धि में मिले हुआ अक्षर कैसे समझ में आए, समझिए हमारी विद्वत्ता, मिले हुए अक्षरों को पता नहीं। तो हम पढ़ते थे, एक लड़का मिला था खेमराज उसका नाम था, उसको हमने पूछा, हम दो विद्यार्थी थे, हमने पूछा कि तुम संस्कृत और हिंदी को अलग अलग जानते हो कि हाँ, तो सभी हम तो अलग नहीं जानते, हिंदी क्या होती है संस्कृत क्या होती है हमारे पता नहीं, अब वर्ण पढ़ा हुआ वर्णाल पढ़ा क्या बताएगा क्या हिंदी क्या संस्कृत है। तो वो हमारे समझदार मालूम दिया कि इसको समझे भाई, हिंदी और संस्कृत दो होती है, और हम समझते नहीं, पूरे पट गए, हिंदी संस्कृत का ज्ञान नहीं, अरे पढ़ाई बाकी नहीं, क्यों जहां देखे अक्षर तो वे भी है, अब क्या बाकी रहा। नारायण 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 नारायण।